Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Iti Panchamyam Ahuta आपा पुरुष वचो भवती चांद के उपनिषद का बृहदारण्यक उपनिषद दोनों जगह पंचाग्नि विद्या है हाँ दोनों उपनिषद में चांदो के उपनिषद में भी पंचाग्नि विद्या उसी रूप में आया है और बृहदारण्यक उपनिषद में भी पंचाग्नि विद्या उसी रूप में आया है। पंचम्यम आहुति पांचवी आहुति पढ़ने के बाद वह जल पुरुष नाम का होकर वो खड़ा होता है, बोलने लगता है, चलने लगता है, घूमने लगता है, फिरने लगता है, प्राणों प्राण करके वह जीवंत तो हो जाता है। वो क्या विद्या तुम जानते हो? बोले तुमने क्या क्या? बोले हमने पढ़ा ही नहीं तो हम कहां से जानेंगे। श्वेत केतु ने कहा उद्दालक से कि आप जानते हो तो बता दो। बोले वो तो हम भी नहीं जानते। तो जाओ चल जाओ बेटा उससे राजा से सीख लो वो क्या चीज है, जान लो। विद्या जाननी चाहिए। बोले अब हम नहीं जाएंगे, उसने हमारा अपमान किया है, तू नहीं जा मैं जाता हूं। तो उद्दालकारुणी राजा प्रवाहन के यहां पहुंच गए और उनसे प्रार्थना करके पंचाग्नि विद्या प्राप्त की और सीख जान लिया। तो उसी समय का यह प्रसंग है। वही पांचवी आहुति, पांचवी आहुति, पांचवी अग्नि तो आप लोगों को पता ही है। पांचवी अग्नि क्या है? पहली अग्नि द्युलोक, स्वर्ग को अग्नि के प्रतीक माना। दूसरी अग्नि पर्जन्य, बादलों को अग्नि का प्रतीक माना। तीसरी अग्नि पृथ्वी, पृथ्वी को भी अग्नि के रूप में लिया गया। चौथी अग्नि पुरुष, पुरुष को अग्नि के रूप में माना गया। और पांचवी अग्नि स्त्री, उसको भी अग्नि के रूप में माना गया। वही स्वर्गस्थ जो श्रद्धावारी है वही क्रम से स्वर्ग से बादल, बादल से पृथ्वी, पृथ्वी से पुरुष में, पुरुष में से स्त्री के गर्भाशय में पहुंचने के बाद वही जलबिंदु पुरुष के रूप में खड़ा होता है। तो सएव अग्नि सलिले सन्निविष्टः, वही हंस इस सलील में, इस जलमय शरीर में, क्योंकि इसका उपादान कारण क्या है? जल है। उसी जल से तैयार हुआ हुआ यह शरीर है, इसलिए इस शरीर में वही अग्नि के रूप में विद्यमान है। वही हंसा अग्नि के रूप में विद्यमान है और उसको हंस भी कहते हैं। हंस उड़ गया बोलते हैं, हंसा चला गया, उसका हंस चला गया। तमेव विदित्वात् मृत्युमेति, इस संसार में मृत्यु से हमेशा के लिए फिर कभी न मरना पड़े इस अवस्था में तुम पहुंचना चाहते हो तो उसी हंस को तुम्हें जानना ही पड़ेगा। उस हंस के यथार्थ स्वरूप को जानना पड़ेगा। हंस को जीव के रूप में जानकर फिर तुम मृत्यु से बच नहीं पाओगे। हंस को शिव के रूप में जानोगे तभी जाकर मृत्यु से बच पाओगे। तम एव विदित्वा, तम माने तत्, तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है, जीव हंस और परमात्मा हंस दोनों की जो एकता है निरुपाधिक रूप, उस स्वरूप को तुम जब जानते हो कि सोहम वही मैं हूं, हंस मैं वो हूं, सोहम हंस, एक अजपा गायत्री नित्य निरंतर जपते रहो। इसको मन से जपना होता है, इसको माला से नहीं, मन से जपो, भावना से जपो, चिंतन करो। श्वास बाहर जावे तो सो बोलो, अंदर आवे तो हम बोलो, सो हम, हम सह, सो हम, हम सह, चलते हुए एक एक कदम है। सुबह मॉर्निंग वॉक करते हो ना, सो हम, हम सह, सो हम, हम सह, एक वॉकिंग करो, क्या मस्ती आती है। जब करते हुए वॉकिंग करो, सोम हम सका, मन से जब करो। तमेव विदित्वा, उसको जानकर ही मृत्युम अति क्रांतम अति मृत्युमेति मृत्युम मृत्युम अति क्रांतम एति गच्छति। मृत्यु के सिर में पांव रख पाओगे तुम, नहीं तो तुम्हारे सिर में वो पांव रखा हुआ है, उल्टा है भाई। जब तक इसको नहीं जानोगे तो तुम्हारे सिर में पांव रखकर खड़ा है वो, और जब इसको जान लेते हैं तो उसके सिर में तुम्हारा पांव हो जाता है। सनत सुजातीय दर्शन है शास्त्र, आप लोग कितने पढ़ते हो पढ़ते नहीं हो, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इसलिए हम बता देते हैं। सनत सुजातीयम महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत सनत सुजातीय दर्शन चार अध्याय का सनत सुजातीय दर्शन है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत 18 अध्याय का है, उसी तरह सनत सुजातीय दर्शन महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत है। वहां साक्षात भगवान सनत सुजात ने राजा धृतराष्ट्र को उपदेश किया, जैसे गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, उसी तरह सनत सुजातीय दर्शन में सनत सुजात ने, सनत कुमार आदि चार है ना, उसमें से सनत सुजात ने राजा धृतराष्ट्र को जो उपदेश दिया था उसको बोलते हैं सनत सुजातीय दर्शन। उस क्रम में सनत सुजात ने कहा कि हे राजन, ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी पुरुष मृत्यु का भी मृत्यु होता है। आत्मज्ञानी तो मृत्यु का मृत्यु है, अज्ञानियों का जो मृत्यु है उस मृत्यु का भी आत्मज्ञानी मृत्यु है, यानी आत्मज्ञानी के सामने मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है, मर जाता है वो। तो जो यहां इस पर की चर्चा की है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसी का ही मानव सनत सुजात ने महाराज मान धृतराष्ट्र को समझाया कि ज्ञानी के सामने मृत्यु मर जाता है। अतिक्रांतम एति गच्छति, पुराण में भागवत में आता है, जब भगवान बावन ने बलि को अपने बस में कर लिया, कहा कि तीसरे पद में कहां रखूं, पांव कहां रखूं, बलि ने अपना सिर दे दिया है, बलि ने अपना सिर दे दिया, यहां रख लो। तब भगवान जब बलि के सिर में पांव रखने लगे और अपने विमान में चढ़कर जाने लगे तो दौड़े दौड़े प्रहलाद आ गए, भागवत में लिखा है। उन्होंने प्रार्थना की, महाराज मैंने इतनी भक्ति की और मेरे सिर में अपने पांव नहीं रखा और इसके सिर में पांव रखा है, दया करो मेरे भी सिर में पांव रखो भाई। हाँ देख लो, तमेव विदित, तम विदित्व एव, ये तम एव विदित्व, तम विदित्व एव, उसको जानना ही चाहिए यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, उसी को जानना, तम एव विदित्व, उसी को जानकर ही, और को जानकर नहीं। अतिमृत्युम एति, मृत्यु का अतिक्रांत कर सकते हो। नान्य पंथा विद्यते अयनाय मोक्षाय, पंथ मुक्ति के लिए दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, न अन्य पंथा, अन्य कोई साधन कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि अब दो ही दिन अवशेष है, छठे अध्याय को पूरा करना है, इसलिए एक ही मंत्र में पूरा समय व्यतीत करना नहीं है, और हम लोग तो बाल के खाल उतारने वाले हैं, है ना, एक एक शब्द का ऐसा चीरफाड़ करते हैं, और व्याख्या करने लग जाएं तो बहुत विस्तार से व्याख्या भी हो सकती है। सामान्य व्याख्या यही है कि जाने बिना कल्याण नहीं है, किसको बोले उस हंस को जाने बिना कल्याण नहीं है, कौन कहां है वो हंस, तो वो सलिले सन्निविष्टम, इसी धाराकाश में विद्यमान है, इसी शरीर में विद्यमान है। स विश्वकृत विश्वविदात्मयोनिर् ज्ञा कालकारो गुण सर्वविदियः प्रधान क्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। फिर वही आया सा, वही परमात्मा विश्वकृत। ये सारे के सारे विश्वों को वो अकेले ही इसको इसकी रचना करता है, इसलिए उसका नाम हो गया विश्वकृत। कौवे को पूरा का पूरा काला किसने किया है, किसने किया है? उसने एक कुंड बनाया, उसमें काला रंग घोल कर रख दिया है और उस कौवे को बनाया, उसमें डुबो दिया और निकाल के फेंक दिया, जा। क्या आसान है, उसी को डुबा दिया, निकाला, फेंका, डुबाया, निकाला, जा। कौओं को कौवा बनाने, काला बनाने के लिए कुंड में काला रंग घोल रखा है। अब तोते को हरा बनाने के लिए दूसरे कुंड में हरा रंग घोल रखा है, उसमें डुबा देता, पहना बनाया, उसमें डुबाया, जा उड़ जा। ले जी, विचित्र है। उस हरे हरे तोते के अंडे से निकले हुए बच्चे को आप देखो, क्या उसका शरीर लाल रक्त होता है, सुर्ख मांस का पिंड, वहां न कोई हरा है, न पीला है, न काला है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो हरे रंग में डुबा के उड़ा दिया, बुझारा हो गया वो। और हंस को सफेद बनाया तो दूसरी जगह सफेद रंग घोल के रखा, उसको बनाया, डुबाया, उड़ा दिया। ये तो तुम्हें समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम इस तरह कर सकते हैं। एक एक रंग में डुबा दिया, उड़ा दिया, एक एक डम में डुबा दिया, उड़ा दिया, तो हंस कोयल और काग काला हो जाएगा और तोता हरा हो जाएगा, हंस सफेद हो जाएगा, बगुला सफेद हो जाएगा। लेकिन मयूर को जब चित्रित करना होगा सप्तरंगी, तो क्या सात रंग का सात कुंड रख के फिर उसमें एक एक में डुबाकर वो रंग बनाए? ये संभव ही नहीं है। इसलिए खुद अंदर बैठता है और अंदर बैठकर कहां किस रंग का विनियोग करना है उसको पूरा ख्याल है, और अंदर से ही वो रंग विकसित होते हैं। तो विश्वकृत करेले को कड़वा बनाना, मिर्ची को तीखा बनाना, ये सब उसी का काम है, मिट्टी के अंदर बैठा है। तुम चाहे गंगा जी का जल डालो करेले के जड़ में, चाहे तुम चीनी को घोल घोल कर शरबत बनाते करेले के जड़ में डालते जाओ, वो चीनी का घोल का जो मीठा पानी है उसका एक अंश भी उस करेले में नहीं आएगा। वो क्या सफाई से काम करता है वो, तुम नमक का पानी डालते जाओ उस जड़ में, जितना डालना हो जार डाल लो, क्या मजाल है कि उस गन्ने के जड़ में नमक का पानी डालो और वो नमकीन हो जाए गन्ना, क्या मजाल है। विश्वकृत सा विश्वकृत, उसकी कला है भाई विश्व की रचना करने की। विश्वविद अपनी कृति को जानता है, विश्वविद सारे विश्व को जानता है। आत्मयोनि ही उसको किसने बनाया, तो बोले वो अपने आप बन गया, इसलिए आत्मयोनि। आत्मना आत्मैव योनि कारणम इति आत्मयोनि, सारे जगत का कारण वो है तो उसका कारण को है, तो बोले उसका और कोई कारण नहीं, वो खुद ही वो अपना कारण है, इसलिए तो उसको कहा है स्वयंभू। स्वयमेव भवती इति स्वयंभू, ना अव्यक्त की आवश्यकता है, ना माया की आवश्यकता है उसको होने के लिए। हमें होने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, उसको होने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, वो स्वयमेव, इसलिए वह आत्मयोनि। ज्ञह वह ज्ञान रूप है, श्रुति यहां जब ज्ञह कह रही है तो वह ज्ञान रूप है, सर्वज्ञ नहीं कह रही है, अल्पज्ञ भी नहीं कह रही है। तीन चीज हो गए, अल्प उपाधि से वह ज्ञान अल्पज्ञ हो गया, सर्प उपाधि से वह ज्ञान सर्वज्ञ हो गया, उपाधि के बाद हो जाने के बाद अल्प और सर्वता न रहने के कारण वह केवल ज्ञान मात्र हो गया। ज्ञान कालकारो कि काल का कर्ता वही है, समय का विभाजन करता वही है। काल को अपने ही अधिष्ठान में काल को विवर्तित किया उसने, कालकार सकालकार गुणी, वह गुणी है, हालांकि वह निर्गुणी है, उसमें कोई गुण नहीं है, फिर भी वह गुणी है। और गुणी शब्द का अर्थ शंकराचार्य जी ने कर दिया है, गुणी अपहत पापमादिवान ईश्वर, अपहत पापमादिवान, पाप आदि पुण्य आदि उसमें स्पर्श कर ही नहीं सकते हैं। अविद्या क्लेश कर्म विपाकाश रहित पुरुष विशेष ईश्वर करके महर्षि पतंजलि ने जो ईश्वर का लक्षण बता दिया है, क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे रहित है वो ईश्वर, और जीवात्मा इनसे ग्रसित है, और शायद इसी के प्रति संकेत कर दिया है। तो गुणी शब्द का अर्थ होता है कर्म विपाक आदि क्लेश आदि से रहित है वो। सर्वविद यह, ये देखो पहले ज्ञा कहा और फिर सर्वविद कहा, निरुपाधिक में वह ज्ञान स्वरूप है और सर्व उपाधि से वह सर्वविद है, क्योंकि परमात्मा एक तो सोपाधिक है और दूसरा निरुपाधिक है। सोपाधिक में व्यष्टि उपाधि उसकी नहीं है, समष्टि उपाधि है, इसलिए सर्वविद है वो, परमात्मा अल्पविद नहीं हो सकता है, और अल्पविद तो अल्प उपाधि के चलते जीवात्मा होगा। और सर्व और अल्प की जो उपाधि है समष्टि और व्यष्टि उपाधि के बाद होते ही वह केवल ज्ञा रहता है, वह ज्ञा ही सर्व उपाधि से युक्त होने पर सर्वज्ञ, अल्प उपाधि से युक्त होने पर अल्पज्ञ, वही हंस, उसी हंस का खेल है ये सब। ज्ञा कालकारो गुण सर्वविद यह प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश, प्रधान और क्षेत्रज्ञ दोनों का वो पति है। प्रधान और क्षेत्रज्ञ माने यहां प्रधान शब्द का अर्थ होता है क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ का अर्थ होता है जीवात्मा। प्रधान का अर्थ क्या करोगे, क्षेत्र। गीता का 13वां अध्याय को स्मरण कर लो, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते यतद यो व्यतीतम तत्र क्षेत्रज्ञ। ये अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, लेकिन एक और है जो क्षेत्र को भी जानता है और क्षेत्रज्ञों को भी जानता है। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा वो केवल क्षेत्र को जानता है, अपने को नहीं जानता। आप अपने शरीर को तो जानते हो, अपने को नहीं जानते हो। और वह तीसरा जो व्यक्ति है वह तुम्हारे क्षेत्र को भी जानता है और क्षेत्राभिमानी तुमको भी जानता है। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र दोनों को जानने वाला क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोश्चैव। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रमित्य विधीयते यतद यो व्यतीतम प्राव क्षेत्रज्ञ इति, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोश्चैव, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दोनों को जो जानता है वह ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से भिन्न है, जो गीता के 13वें अध्याय में मान लो इसी मंत्र की व्याख्या वहां हो रही हो। प्रधान शब्द से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द से जीवात्मा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पति ही माने दोनों का वह पति है, पालन करने वाला है, दोनों का रक्षा करने वाला है, दोनों का वह स्वामी है, अधिपति है। क्षेत्र को भी वही नियंत्रित करता है, नियमन करता है, क्षेत्रज्ञों को भी वही नियमन करता है, इसलिए अंतर्यामी है। चांदोग्य उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मण का प्रसंग है। या पृथिव्याम तिष्ठत पृथ्वी यस्य शरीर, जो पृथ्वी में रहता है और पृथ्वी जिसका शरीर है, और पृथ्वी जिसको नहीं जानती और जो पृथ्वी को भी जानता है, और जो पृथ्वी के अंदर रहकर पृथ्वी को भी जानता है और पृथ्वी का नियमन करता है, वही अंतर्यामी है। इस तरह एक एक अध्यात्म एक एक अधिभूत के अंदर उसको रहकर उसका नियामक के रूप में वहां प्रतिपादन किया हुआ है और अंत में कह दिया कि जो सर्वस्व है जो सभी में रहता है सभी उसके शरीर हैं, वो जिसको नहीं जानते वो उसको जानता है और उसका नियमन करता है वही अंतर्यामी है। या प्रधान क्षत्रज्ञ पतिर शब्द से वही चांदोग्य उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण के अनुसार उसको जो अंतर्यामी कहा है ये सबका पति है यानी उसका नियमन करने वाला है। अब गुणेश, गुणेश का अर्थ होता है तीन प्रकार के जो गुण हैं उन गुण का वो मालिक है। तमोगुण का भी वही मालिक है, जब चाहे ग्रहण कर लेता है और संहार कर लेता है, जब चाहे वह छोड़ देता है असंग हो जाता है, जब चाहे ग्रहण कर लेता है तो सृष्टि कर लेता है और जब चाहे छोड़ देता है, जब चाहे वह ग्रहण करता है पालन करता है, जब चाहे छोड़ देता है। रजोगुण को धारण करता है तो सृष्टि करता है, सत्वगुण को धारण करता है पालन करता है, तमोगुण को धारण करता है तो संहार करता है। इस समय हम पालनकर्ता बने हुए हैं, सृष्टिकर्ता सुबह हुए थे अब पालनकर्ता हो गए और शाम को खाना खाने के बाद संहारकर्ता हो जाएंगे, नहीं है? सुबह आंख खोली सृष्टिकर्ता हो गए, अब दिन भर पालनकर्ता हो गए और शाम को खाना खाने के बाद संहारकर्ता हो जाएंगे है? और कदाचित यदि किसी संतों की कृपा हो गई और आपकी साधना फलीभूत हो गई तो आप ये तीनों गुणों से अहित समाधि में चले जाते हो तो गुणों का कोई प्रभाव ही नहीं है। प्रधान क्षत्रज्ञ पतिर गुणेश संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, गुणेश है इसीलिए वह गुण के द्वारा संसार को उत्पन्न करना, संसार को स्थापित करना और संसार को मोक्ष करना, यानी संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। दूसरी बात है कि जीवात्मा को संसार की प्राप्ति, संसार में जीव रूप में रहना और इन दोनों भाव से मुक्ति, ईश्वर कृपा उस परमात्मा की कृपा बिना संभव नहीं। उसके अज्ञान से संसार की प्राप्ति और स्थिति है बंधन है, उसके ज्ञान से संसार का मोक्ष है। ये बंधन में फंसना और मुक्त होने में भी वही कारण है, उसके अज्ञान ही उसका अज्ञान संसार का बंधन का कारण है। सतन्मयो यमृत ईश संस्थो, स माने वही परमात्मा, तन्मय है प्रकाशमय है चैतन्यमय है सतमय है चिन्मय है और आनंदमय है, उसका ये स्थायी भाव है सच्चित आनंद। सतन्मय प्रकाशमय चिन्मय ज्ञानमय सदमय सत्तामय और आनंदमय सुखमय, ये अमृत क्योंकि वह कभी भी नाश नहीं होता इसलिए वह अमृत है। ईश संस्थ वह सभी इसमें ईश स्थ है, वो ईश वह संस्थ है, सारे जगत उसी ईश में रहता है। ज्ञह ये फिर भी आ गया ज्ञह पद, सर्वगो वह सब जगह रहता है, सर्वत्र गच्छति इति सर्वगः, तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्य, केन उपनिषद का मंत्र है। वह दूर से दूर है और अंदर से अंदर है, सब परियगात, सब दौड़कर सब जगह पहुंचते हैं, वो बिना दौड़े वो सब जगह पहुंचता है, इसीलिए उसको परियगात कहा, उसको सर्वगः कहा। भुवनस्यास्य गोप्ता, इस भुवन का वह रक्षक है पालन करता है। यागी से यस्य जगतो नित्यमेव, जिसके द्वारा ये सारा का सारा जगत नित्य नियमित हो रहा है। इस माने स्टेति इस शासन करने वाला है, अस्य जगतस्य नित्यम ईशः, हमेशा इस जगत का जब तक महाप्रलय नहीं होगा इसकी ठीक व्यवस्थित रूप में संचालन करने का जिम्मा उसी का है, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली है। नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाया, सारे जगत को संचालन करने का उसके अलावा और किसी में क्षमता नहीं है। कोई काल कह देते हैं, कोई स्वभाव कह देते हैं, कोई नियति कहते हैं। इस जगत कौन चला रहा है? बोले तो ये अपने आप ही चल रहा है। अरे अपने आप चलेगा ये? तुम्हारे बंबई की ट्रैफिक तो ट्रैफिक कंट्रोलर न हो तो क्या जाम हो जाता है। ट्रैफिक कंट्रोलर होते हुए भी वो सिर में हाथ रख के एक तरफ भाग जाते हैं, ऐसे ट्रैफिक हो जाती है। तो विश्व ये अनंत अनंत ब्रह्मांड में कितने ग्रह घूम रहे हैं, वहां मजाल है कि एक दूसरे ग्रह एक दूसरे से टकरा में क्या व्यवस्थित है। ये कौन नियमित कर रहा है? सबको संचालन करने की क्षमता उसमें है, इसलिए उसके अलावा और कोई ये विश्व जगत को चलाने की क्षमता और किसी में नहीं है। नान्यो हेतुर्विद्यता ईशनायः, और क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिवागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।